पृष्ठ संख्या 38, शेख इराकी हमदानी। शेख फकरुद्दीन इब्राहिम इराकी हमदान वे कमजान नामक ग्राम में उत्पन्न हुए जो जिला हमदान में स्थित है। श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 263। इस परंपरा के एक पृष्ठ संख्या 39 विशिष्ट सूफी एवं फारसी काव्य में लोकोत्तर प्रेम के अमर कवि हैं। उनकी काव्य संपदा भाव एवं भाषा दोनों दृष्टियों से विपुल है। उनकी शैली सर्वथा आकर्षक है। उपमानों और प्रतीकों के प्रयोग द्वारा उनके काव्य में निखार आ गया है। वे एक मस्त कलंदर थे जिनका धर्म प्रेम था और जिन्हें सृष्टि के कण कण में प्रेम ही की आभा दृष्टिगत होती थी। 17 वर्ष की आयु में वे कलंदरों के एक समूह के साथ भारतवर्ष में आए और यहाँ मुल्तान में शेख बहाउद्दीन के विशेष शिष्य हो गए। एक यहीं उन्होंने सुप्रसिद्ध गजल कही जिसका लोकप्रिय शेर है, बगेती हर कुजा दर्दे दिले बूद बहम करंदंदो इश्क कश नाम करदंद दो। अर्थात संसार में जहाँ कहीं भी दिल का दर्द दुख था उसको एकत्रित किया गया और उसका नाम इश्क प्रेम रखा गया। शेख बहाउद्दीन यह गजल सुनते ही मस्ती में झूम उठे। उन्होंने अपनी गुदड़ी उतार कर शेख इराकी को पहना दी। कालोपरांत अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। शेख इराकी को हिंदुस्तान में रहते हुए 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शेख बहाउद्दीन का देहावसान हो गया। प्राण त्यागने से पूर्व वे शेख इराकी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए। दूसरे दरवेशों ने इसका कट्टर विरोध किया। उन्होंने विवश होकर हिंदुस्तान को त्याग दिया। यहाँ से वे मक्का तथा मदीना में गए, फिर एशिया एक कोचक एशिया माइनर में पहुंचे। अंततः दमिश्क में 78 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत सन 688 हिजरी सन 1289 ईस्वी में हो गया। 3 1 क प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 125 ख श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 264-65 2 कुल्लियाते शेख फखरुद्दीन इब्राहिम हमदानी मुतखलिस ब इराकी तेहरान 1338 पृष्ठ 193 3 क प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 128 ख श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 269 पृष्ठ संख्या 40 शेख इराकी ने गजलों में कल्पना की चित्रपटी पर प्रेम के चित्र अंकित करके अपनी भावुकता का अच्छा परिचय दिया है। यथा क रूखे तू दर खोरे चश्मे मन अस्त लेक चे सूद की पर्दा अज रूखे तू बर नमी तवा अंदाख्त क एक अर्थात तेरा चेहरा इस काबिल है तो जरूर कि मेरी आंख उसे देखे, लेकिन हासिल क्या जबकि तेरे चेहरे से पर्दा ही ना उठाया जा सकता हो। ख ब जमी चू सिजदा करदम जे जमी निदा बर आमद की मरा खराब कर दी तू ब सिजदा ए रियाई दो। अर्थात जब मैंने भूमि पर माथा टेका तो भूमि से आवाज आई कि तूने छल छंद सहित किए गए अपने सिजदे से मुझे दूषित कर दिया। उन्होंने एक मसनवी उशाक नामा भी रची जिसमें तसव्वुफ की विभिन्न समस्याओं का समाधान स्वच्छ एवं सुंदर शैली में किया गया है। दीवान एवं मसनवी के अतिरिक्त शेख इराकी कृत एक चंपू लम्आत 3 विख्यात है जिसकी व्याख्या मौलाना जामी ने लिखी है। प्राचीनतम प्रति के अनुसार इसमें 27 अध्याय हैं, 4 जिनमें अलौकिक प्रेम पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। 1 कुल्लियाते शेख फखरुद्दीन इब्राहिम हमदानी मुतखलिस ब इराकी तेहरान 1338 पृष्ठ 145 2 वही पृष्ठ 296 3 लमात लमअत अथवा लम का बहुवचन है। इस ग्रंथ में अध्याय के लिए लम शब्द प्रयुक्त किया गया है। 4 श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 266 शेख महमूद शबिस्तरी इराकी के पश्चात सूफी साधक और कवि शेख महमूद शबिस्तरी ने पृष्ठ संख्या 41 सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रत्न गुलशने राज में तसव्वुफ की गुत्थियों को सुलझाया और प्रसिद्धि प्राप्त की। शेख सादुद्दीन महमूद बिन अब्दुल करीम शबिस्तरी शबिस्त्र ग्राम में उत्पन्न हुए, जो तबरेज से 7 मील की दूरी पर स्थित है। एक, इसी स्थान पर उनका पालन पोषण हुआ और यहीं युवावस्था तक पहुँचे। वे बड़े मेधावी और अध्ययनशील थे। उन्होंने सूफी मत के ग्रंथों का गहन तथा गंभीर अध्ययन किया और शीघ्र ही सूफी मत के चोटी के विद्वानों में उनकी गणना होने लगी। सूफी मत की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान पाने के लिए लोग इनके पास आया करते थे। उनकी प्रथित मसनवी गुलशने राज प्रश्नोत्तर रूप में है। इसमें समस्त प्रश्न तथा उत्तर सूफी मत से संबंधित हैं। ये प्रश्न 2 विद्वानों द्वारा सन 717 हिजरी सन 1317 ईस्वी में किए गए थे। 2, शेख साहिब सूफी पहले थे और कवि बाद में। उन्होंने जो लिखा है वह हृदय की सहज प्रेरणा से आंदोलित है। फिर भी उनकी मसनवी मध्यम कोटि की नहीं, वरन यह कवि की काव्य प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण है। गुलशने राज में तसव्वुफ की गंभीरतम बारीकियों को उदाहरणों तथा छोटी छोटी चित्रंजक कथाओं द्वारा अत्यंत स्पष्ट एवं आकर्षक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। लगता है कि कवि ने गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ कर दिया हो। यही कवि की सबसे बड़ी सफलता है। दर्शन जैसे गंभीर विषय भी उनकी लेखनी का स्पर्श पाकर सरस एवं रोचक हो उठे हैं। इस मसनवी के विषय में प्रोफेसर ब्राउन का कहना है, सूफी धर्म ग्रंथों में इसका स्थान बहुत ही ऊंचा है। 3, 1, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक, तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 263। 2, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक, तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 264। 3, प्रोफेसर ब्राउन और लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 146। पृष्ठ संख्या 42। 19वीं शती के आरंभ में इस ग्रंथ का अनुवाद जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में हो गया था। सुप्रसिद्ध सूफी कवि जामी ने अपनी पुस्तकों में इस मसनवी के विषय में कई बार लिखा है और अपनी लवायह नामक पुस्तक में इसकी बड़ी प्रशंसा की है। 1, इस मसनवी में जो प्रश्न उत्तर उल्लिखित हैं, उनका एक उदाहरण देखिए। प्रश्न, मुसाफिर चूं बवद रहरो कुदामस्त, किरा गोयम की ऊ मर्दे तमाम अस्त। 2, अर्थात मुसाफिर या सालिक पथिक कौन है और किसको कहूं कि वह मर्दे कामिल सिद्ध पुरुष है। उत्तर, मुसाफिर आ बवद कु बगुजरद जूद, जे खुद साफी शबद चू आतिश अजदूद। 3, मुसाफिर वह होता है जो शीघ्र ही अपने आप को शुद्ध निर्मल तथा अवदात बना ले। जिस प्रकार आग धुएं से पृथक हो जाती है, उसी प्रकार साधक को भी खुद परस्ती आदि से जुदा हो जाना चाहिए, अर्थात अपना आपा खो देना चाहिए। शेख साहब ने हकीकत सत्य के संबंध में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य थोड़े समय के लिए दिव्य दृष्टि से देखे और अपने बाह्य एवं शारीरिक सीमाओं का विस्मरण कर दे, तो देखेगा कि इसमें और संसार में कोई अंतर नहीं। प्रत्येक वस्तु का मूल एक सत्य है, अतः ज्ञात हुआ कि वही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। 1, मौलाना इज़ामी लवायह इज़ामी नवल किशोर प्रेस अध्याय 28 पृष्ठ 23-24। 2, गुलशने राज संपादक एवं अनुवादक मौलवी अहमद हसन दिल्ली पृष्ठ 29। 3, वही पृष्ठ 29, जैसे सब अंक एक से बनते हैं वैसे ही पृष्ठ संख्या 43। संसार भर की समस्त वस्तुएं उसी एक से निर्मित हैं और वही एक सब में वर्तमान है। दरी खाना यके शुद्ध जमा अफराद, चू वाहद सारी अंदर एने अदाद। 1, सारांश यह कि गुलशने राज में सूफियाना विषयों को 1000 शेरों की मधुर मसनवी में अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। हक्कुल यकीन उनका गद्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रिसाला ए शाहिद भी उनकी रचना है। ये दोनों रचनाएं सूफी मत विषयक हैं। शेख शबिस्त्री ने सन 720 हिजरी सन 1320 ईस्वी में स्वर्गारोहण किया। उनका मजार शबिस्त्र में वर्तमान है। दो, औहदी मरागी या औहदी मरागी इस्फहानी। शेख औहदी मरागी फारसी के 4-3 अग्रगण्य मसनवी लेखक सूफी कवियों में से हैं। उनका जन्म मरागा में हुआ तथा यहीं उनका देहांत हुआ। इस्फहान उनका पैतृक स्थान था। उनकी आयु का अधिक भाग इस्फहान ही में व्यतीत हुआ। उनकी निधन तिथि 15 शाबान सन 738 हिजरी अनुमानतः 8 मार्च सन 1338 ईस्वी है, जो उनकी समाधि पर मरागा में अंकित है। 4. उनकी सुप्रसिद्ध मसनवी जामे जम सन 733 हिजरी में बगदाद में समाप्त हुई। 5. उसके लेखन में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। 6. 1. गुलसने राज संपादक एवं अनुवादक मौलवी अहमद हसन दिल्ली पृष्ठ 28। 2. डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 265। 3. सनाई अत्तार रूमी तथा औहदी। 4. दीवाने औहदी संपादक श्री ए एस यूशा भूमिका मद्रास सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 1। 5. चू ब तारीख बर गिरफ्तम पाल हफ्त सद रफ्ता बूदो सौ औ सिह साल जामे जमम कलमी, अर्थात जब मैंने शुभ रचना तिथि के लिए गणना की तो वह सन 733 हिजरी निकली। 6. दीवाने औहदी संपादक श्री ए एस यूशा भूमिका मद्रास सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 2। जामे जम के निम्नलिखित शेर पृष्ठ संख्या 44 से यह अनुमान किया जा सकता है कि उस मसनवी के रचना समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। औहदी शस्त साल सख्ती दीद ता शबे रुए नेक बख्ती दीद। 1. कवि औहदी ने 60 वर्ष तक दुख उठाए, अंततः उसने नेक बख्ती का मुख देखा। इससे कहा जा सकता है कि उनका जन्म सन 672 और 673 हिजरी के आसपास हुआ और वे 65 या 66 वर्ष जीवित रहे। कवि औहदी ने मरागा में शिक्षा प्राप्त की। 2. किरमान पहुंचकर प्रख्यात सूफी एवं विद्वान औहदुद्दीन किरमानी के शिष्य हुए और उसके पश्चात उन्होंने अपना उपनाम औहदी रख लिया। 3. कहते हैं कि इब्तिदा प्रारंभ में सूफी तखल्लुस उपनाम करते थे। 4. शेख औहदी की सब कृतियां पद्य में हैं। उन्होंने किसी गद्य ग्रंथ की रचना नहीं की। उनकी प्रसिद्धि का आधार है 2 मसनवियां जामे जम तथा दिहनामा या मंतिकुल उशाक और 1 दीवान। इनमें प्रायः 15,000 शेर हैं। 5. 1. जामे जम कलमी मौलाना आजाद पुस्तकालय अलीगढ़। 2. दीवाने औहदी संपादक श्री ए एस यूशा भूमिका मद्रास सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 5। 3. वही पृष्ठ 5। 4. वही पृष्ठ 5। 5. जामे जम बराबर प्रायः 5,000, मंतिकुल उशाक बराबर प्रायः 1,000 तथा दीवान बराबर प्रायः 5,000। जामे जम के विषय में मौलाना शिबली ने लिखा है कि सुल्तान अबू सईद न्यायशील शासक था, यहाँ तक कि औहदी किरमानी ने अपनी पृष्ठ संख्या 45 मसनवी जामे जम में सुल्तान की प्रशंसा की है। 1. यह कथन सर्वथा अनैतिहासिक है क्योंकि शेख औहदी किरमानी की मृत्यु सन 397 हिजरी में हो गई थी। 2. सुल्तान अबू सईद ने सन 716 से 736 ईस्वी तक राज्य किया। 3. और मसनवी जामे जम की रचना सन 733 हिजरी में हुई, जैसा कि जामे जम के निम्न शेर से स्पष्ट है। चूं ब तारीख बर गिरफ्तम फाल हफत सद रफ्ता बूदो सी ओ सिह साल। 4. अर्थात जब मैंने रचना काल का फाल मुहूर्त निकाला तो यह सन 733 हिजरी नियत हुआ। स्पष्ट है कि वास्तव में इस मसनवी का रचयिता शेख औहदी मरागा इस्फहानी मृत्यु सन 738 हिजरी ही है, न कि शेख औहदुद्दीन किरमानी मृत्यु सन 697 ईस्वी। जामे जम में 5,000 शेर हैं और यही शेख औहदी मरागी का शाहकार श्रेष्ठतम काव्य है। 5. यह मसनवी हकीम सनाई कृत हदीका की बहरे हफीफ में लिखी गई है। इसकी शैली भी वैसी ही है जैसी कि हदीका की, परंतु इसमें हदीका से अधिक सरसता, सहृदयता तथा सरलता है। एक, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग दो, अलीगढ़, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ दो। दो, प्रोफेसर हाफिज महमूद शीरानी तनकीदे शेरुल अजम दिल्ली, सन 1942 ईस्वी, पृष्ठ 349। तीन, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 286। चार, क जामे जम कलमी ख डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 286। पाँच, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 286। पृष्ठ संख्या 46। शेख ओहदी इस्फहानी ने जामे जम में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। सृष्टि के संबंध में कवि लिखता है, मा हपा साया एमो नूर यके अस्त। एक, हम सब छाया है, प्रकाश केवल एक ही है, अर्थात समस्त संस्कृति का आलोक और सौंदर्य उसी प्रभु का प्रोद्भास एवं छाया स्पर्श मात्र है। जामे जम में शेख साहब ने सूफियों के अनेक मूलभूत सिद्धांतों को अत्यंत सरस एवं काव्यात्मक रूप में उपस्थित किया है। सच तो यह है कि जामे जम जैसी मसनवी सरल एवं सरस फारसी भाषा में शायद ही मिले। दो, दीवान में प्रायः 6000 शेर हैं, इसमें गजलें, कसीदे आदि सम्मिलित हैं। गजलें प्रायः दिव्य प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं और उच्च कोटि की हैं। यह प्रसिद्ध शेर उन्हीं का है, खाक साराने जहां राब हिकारत मिंगर तूचे दाने की दरी गर्द सवारे बाशद। तीन, अर्थात संसार के खाक सारों नम्र साधकों को घृणा की दृष्टि से मत देख, तुझे क्या पता कि इस गर्द में सवार सिद्ध महानुभाव हों। एक, क जामे जम कलमी ख मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ, सन 1922 ईस्वी, पृष्ठ 98। दो, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 288। तीन, दीवाने ओहदी संपादक श्री ए एस यूशा मद्रास, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 4। सारे संसार की सुंदरता, प्रफुल्लता, निर्मलता, पवित्रता आदि दिव्य, पृष्ठ संख्या 47। विभूतियाँ परम प्रियतम की सत्ता से सत्तावान हैं। एक, अतएव सृष्टि की विभूतियाँ उसी की सत्ता की ओर इंगित करती हैं। शेख साहेब लिखते हैं, कर्द आश्कार सूरते खूबत हजार हुस्न, वा हुस्नहा जे दीदा ए सूरत निहा हमा। दो, अर्थात हे परम प्रियतम, तेरे सुंदर रूप ने सृष्टि में असंख्य सौंदर्य प्रकट किए, परंतु वे सौंदर्य साधारण आँख से निहित हैं। शेख ओहदी ने प्रतीकों द्वारा सूफियाना रहस्यों का उद्घाटन किया है। अपनी मैं नौशी मदिरा पान की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, पुरसीदाई की बादा खुरद ओहदी बले खुरदस्त बादा लेक जे जामे अलस्ते इश्क। तीन, अर्थात तूने पूछा है क्या ओहदी मदिरा पान करता है, हाँ यह मदिरा पीता है परंतु दिव्य प्रेम के प्याले से। कवि ओहदी के कसीदे प्रायः उपदेशों से परिपूर्ण हैं, उनमें किसी बादशाह की प्रशंसा नहीं की गई है। ख्वाजी हाफिज ने अपने काव्य में शेख ओहदी को पीरे तरीकत, वह गुरु जो अपने शिष्यों को हृदय की शुद्धता द्वारा परम तत्व के साक्षात्कार की चेष्टा करने का उपदेश दे, कहा है, नसीहत कुनमत याद गिरो दर अमल आर की ई हदीस जे पीरे तरीकतम याद अस्त। एक, ए रोशन अज रूखे तू जमी ओ जमा हमा, दीवाने ओहदी संपादक श्री ए एस यूशा मद्रास, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 355। अर्थात हे प्रियतम, तेरे रूप से आकाश से पाताल तक सब वस्तुएं उद्भासित हैं। दो, वही 356। तीन, दीवाने ओहदी संपादक श्री ए एस यूशा मद्रास, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 202। पृष्ठ संख्या 48। मजो दुरस्ती ए अहद जहाने सुस्त निहाद की ई अजूजा अरुसे हजार दामाद अस्त। एक, अर्थात मैं तुझे एक शिक्षा देता हूँ, इसे याद रख और इस पर अमल कर, पीरे तरीकत की है बात मुझे याद है कि इस बोधी बुनियाद नींव रखने वाली दुनिया से वचन पूरा करने की आशा न रख, क्योंकि यह बुढ़िया हजारों दुल्हाओं की दुल्हन है। ख्वाजा हाफिज के इन दो बैतों का चौथा मिसरा शेख ओहदी का है। उन्होंने अपने एक कसीदे में यह शेर इस प्रकार कहा है, मदीह ब शाहिदे दुनिया इनाने दिल जिनहार की ई अजूजा और उसे हजार दामाद अस्त दो। अर्थात जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, क्योंकि यह बुढ़िया हजारों दुल्हाओं की दुल्हन है। शेख ओहदी इस्फहानी की रचनाओं को अध्ययन करने से उनकी भव्यता का परिचय मिलता है। वे उच्च कोटि के सूफी साधक थे, साधारण धर्म और विशेष धर्म दोनों के तत्वों को समझते थे। तसव्वुफ के विषयों में उनका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था, अतएव उन्होंने अपनी रचनाओं में दिव्य प्रेम का निरूपण अत्यधिक सफलतापूर्वक किया। एक दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 19। दो दीवाने ओहदी संपादक श्री ए एस यूशा मद्रास सन 1951 ईस्वी कसीदा 16 पृष्ठ 24। ख्वाजा शमशुद्दीन मोहम्मद हाफिज लिसानुल गैब अदृश्य की जिहवा या स्वर्गिक रहस्यों के व्याख्याता। ख्वाजा शमशुद्दीन मोहम्मद हाफिज ने 8वीं शती हिजरी में अपनी गजलों के माध्यम से सूफी मत की गूढ़ व्याख्या की। इनकी सरसता से सूफी काव्य का स्रोत पूर्ववत प्रवाहित रहा। ख्वाजा शमशुद्दीन मोहम्मद का जीवन वृत्त फारसी साहित्य के अन्य प्रसिद्ध कवियों की भांति अंधकार से आच्छन्न है। उनके संसर्ग में आने वाले व्यक्तियों ने पृष्ठ संख्या 49 भी उनकी जीवनी बहुत ही कम लिखी है। उनके संबंध में जो जानकारी प्राप्त है वह उनके अपने विषय में कही गई उक्तियों ही पर आधारित है। आकस की गुफत किस्से माजे मा शुनीद एक, अर्थात वह जिसने हमारी जीवन कथा सुनाई वह हम ही से सुनी। बहुमान्य मत यह है कि हाफिज का जन्म सन 720 हिजरी सन 1320 ईस्वी के लगभग शिराज में हुआ। दो उनके पिता पहले पहल इस्फहान में रहते थे, सलगरी अताबकों के समय में शिराज में आए और वहीं के निवासी हो गए। तीन शिराज के विषय में कवि ने अपने दीवान में खूब लिखा है। प्रसिद्ध है कि इस स्थान की जलवायु में कविता का प्रभाव है। प्रत्येक व्यक्ति या तो कवि होता है या काव्य प्रेमी। शिराज यदि शेख सादी एवं ख्वाजा हाफिज ऐसे विश्वविश्रुत कवियों पर गर्व करे तो संगत ही है। ख्वाजा हाफिज के पिता ख्वाजा बहाउद्दीन ने व्यापार से बहुत धन कमाया। उनके शैशव में बहाउद्दीन चल बसे। चार ख्वाजा हाफिज के अन्य दो भाइयों में व्यापार की कुशलता नहीं थी, इसलिए शीघ्र ही पिता की संचित संपत्ति समाप्त हो गई। घर में भूख का साम्राज्य छा गया। कवि जब किशोर हुए तो खमीर बनाने का व्यवसाय अपना लिया। घर के पास ही एक पाठशाला थी, मोहल्ले के सब बालक उसमें पढ़ते थे। ख्वाजा साहिब प्रायः उधर से निकलते तो उनके मन में पढ़ने की अभिलाषा जगती। एक दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 115। दो डॉक्टर रिजाजादा शफक तारीख अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 307। तीन वही पृष्ठ 307। चार क मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 2 अलीगढ़ सन 1910 ईस्वी पृष्ठ 213। ख श्री आर बेरी ए जी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 330। शनई पृष्ठ संख्या 50। शनई यह चाह इतनी प्रबल हुई कि पाठशाला में प्रविष्ट हो गए। खमीर से जो कुछ प्राप्त होता उसमें से एक तिहाई माता को, एक तिहाई अध्यापक को और शेष दान रूप में दे देते। एक उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। उनमें से एक शेख किवामुद्दीन अब्दुल्लाह मृत्यु सन 772 हिजरी भी थे। दो उन्होंने कुरान का सम्यक अध्ययन किया और उसे कंठस्थ किया, इसी कारण उन्होंने अपना उपनाम हाफिज 3 अपनाया। उनके हाफिज 4 होने का प्रमाण उनकी अनेक पंक्तियों से सिद्ध होता है। नदीदम खुस्तर अज शेरे तु हाफिज ब कुराने की अंदर सीनादारी 5, अर्थात हाफिज उस कुरान की शपथ जो तुझे कंठस्थ है, मैंने तेरे शेर से श्रेष्ठतर कोई शेर नहीं देखा। उस समय कविता की घर घर चर्चा थी। 6 और प्रत्येक प्राणी कवि बना हुआ था। ख्वाजा साहब ने भी कुछ पद्य लिखे, आपके बेतुके शेरों के स्थान स्थान पर खिल्ली उड़ाई गई। 2 वर्ष तक यही स्थिति रही। एक दिन परम दुखित हुए और बाबा कुही के मजार पर जाकर फूट फूट कर रोए। रात को सपने में देखा कि एक प्रतिष्ठित पुरुष ग्रास खिलाते हुए कहते हैं, जा अब तुझ पर सब विद्याओं के द्वार उन्मुक्त हो गए। एक, मौलाना शिबली, शेरुल अजम भाग दो, अलीगढ़, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ 213। दो, डॉक्टर रिजाजदा शफक, तारीख़ अदबियात ईरान 1336-1337, पृष्ठ 307। तीन, वह व्यक्ति जिसे कुरान कंठस्थ हो। चार, डॉक्टर रिजाजदा शफक, तारीख़ अदबियात ईरान 1336-1337, पृष्ठ 307। पाँच, दीवान हाफिज, मतबाए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 410। छः, यह कथा मौलाना शिबली कृत शेरुल अजम में वर्णित है, भाग दो, अलीगढ़, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ 213-14। नाम, पृष्ठ संख्या 51। पूछा तो मालूम हुआ कि पैगंबर खिज्र हैं। प्रातः उठे तो अपनी सुविख्यात गजल कही, जिसका पहला शेर निम्न था, दोष वक्ते सहर अस गुस्सा नजातम दादंद, वंजा जुल्मते शब आबे हयातम दादंद। एक, अर्थात कल प्रातः काल मुझे व्याथा से मुक्ति दी गई और रात्रि के घनांधकार में मुझे आबे हयात अमृत प्रदान किया गया। कई विद्वानों को इस घटना की सत्यता में संदेह है। हमारे विचार में उक्त कथा कपोल कल्पित है। उपर्युक्त घटना में इतना तथ्य ही यथार्थ प्रतीत होता है कि श्रीराजवासियों ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। उपालम्ब देते वे एक स्थान पर कहते हैं, सखुंदानी ओ खुशखानी नमी वर्जंद दर शिराज, बया हाफिज की पा खुदरा व मुल्के दीगर अंदाजेम। दो, अर्थात कविता एवं सुंदर रचना शिराज में आदर नहीं पाते, ए हाफिज आ किसी अन्य देश में चलें। अनेक कष्ट सहने पर भी जन्मभूमि के अनुराग ने उन्हें अन्यत्र जाने न दिया। ख्वाजा साहब को शिराज के मनोरम दृश्यों से इतना लगाव था कि क्षण भर का बिछोह भी उन्हें स्वीकार नहीं था। वस्तुतः शिराज से आपको इश्क था। तीन, उनकी प्रशंसा प्राय शेरों में की है, यथा खोशा शिराजो वजा बे मिसालश, बुदा वंद निगहदार अज जवालश। चार, अर्थात शिराज कैसा सुंदर नगर है और उसका रूप कैसा अद्वितीय है, हे प्रभु इसे पतन से सुरक्षित रख। एक, दीवाने हाफिज, मतबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 136। दो, दीवाने हाफिज, मतबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 294। तीन, मोहम्मद मोहब्बत जब चरम तक पहुंच जाए तो उसे इश्क कहते हैं। चार, दीवाने हाफिज, मतबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 253। पृष्ठ संख्या 52। भारतवर्ष के शासकों ने आमंत्रण दिए, एक, परंतु स्वदेश प्रेम इतना प्रबल था कि शिराज को न छोड़ा। नमी दहंद इजाजत मरा बसेरे सफर, नसीमे खाके मुसल्ला ओ आबे रुकनाबाद। दो, अर्थात मुझे मुसल्ला, तीन, की भूमि की वायु और रुकनाबाद, चार, का जल यात्रा की सैर की अनुमति नहीं देते। कहा जाता है कि एक रूपसी शाखे नबाद उनकी प्रेयसी थी, परंतु यह भ्रामक है। इस संबंध में सैयद आबिद अली आबिद लिखते हैं, यह जो मशहूर है कि हाफिज शिराजी की मशहूका का नाम शाखे नबात था और वह उसी का जिक्र अपने शेरों को करते हैं, गलत है। पाँच, ख्वाजा साहिब ससंतान थे। एक लड़का युवावस्था में काल कवलित हो गया, उन्हें मर्मांतक शोक हुआ। बुलबुले खूने जिगर खुर्दो गुले हासिल कर्द, बादे गैरत ब सदश हाले परेशाने दिल कर्द, करतुल एने मन आ मेवा ए दिल यादश बाद, की खुद आसा बशुदो कारे मरा मुश्किल कर्द। छे, एक, मौलाना शिबली, शेरुल अजम भाग दो, अलीगढ़, सन 1910 ईस्वी, पृष्ठ 212। दो, दीवाने हाफिज, मतबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 174। तीन, शिराज का एक रमणीय स्थान नगर के इसी भाग में जहां ख्वाजा हाफिज पुष्प विहार किया करते थे दफनाए गए। चार, एक चश्मा, अब तो यह बहुत छोटा सा रह गया है, ख्वाजा साहिब के समय में यह एक भव्य सोता होगा। पाँच, सैयद आबिद अली आबिद, तलमिहाते इकबाल, हिस्सा ए फारसी, लाहौर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 57। छः, दीवाने हाफिज, मतबा ए मजीदी, कानपुर, पृष्ठ 106। अर्थात बुलबुल ने हृदय का रक्त पी पी कर एक पाटल प्राप्त किया। दुर्दैव का पवन ऐसा बहा कि उस बुलबुल का हृदय टूक टूक कर दिया। पृष्ठ संख्या 53। मेरे नैनों का दूर, मेरे नैनों का नूर तेज, हृदय का मधु स्पर्श, आप तो सहज ही दुख सुख शांति को प्राप्त हो गया, किंतु मुझे कुलिश कठोरता में छोड़ गया। कुरअर्तुल ऐन और मेवा ए दिल तथा गुल शब्दों से स्पष्ट है कि वह उन्हीं का पुत्र था और संभवतः एक ही लड़का था। बुलबुले खूने जिगर खुर्दो गुले हासिल कर्द से ध्वनित होता है कि शत शत मनोकामनाओं और मनोतियों के उपरांत उसके घर में उजाला हुआ था, परंतु दुर्भाग्य के एक निठुरे थपेड़े ने उस कुल दीपक को बुझा दिया और ख्वाजा हाफिज को आजीवन व्यथित एवं विलपता छोड़ दिया। ख्वाजा हाफिज ने अधोलिखित कथा में भी शोक व्यक्त किया। दिला दीदी की आ फरजाना फरजंद, चेदीद अंदर खमे आ ताके नीली, बजाए लोहे सीमी दर किनारश, फलक बरसर निहादश लोहे संगी। एक, अर्थात ए दिल, तूने देखा कि उस मेधावी बेटे ने इस नीली चाप की वक्रता, नीले गगन के नीचे क्या सुख पाया। गगन ने उसकी गोद में चांदी की तख्ती तो न रखी, अपितु इसके सिर पर पत्थर की सिल रख दी। ख्वाजा साहब, सन 791 हिजरी, सन 1389 ईस्वी में दिवंगत हुए और प्रिय जन्मभूमि में दफन किए गए। जो लोकप्रियता उनकी गजलों को प्राप्त हुई है, वह शायद ही किसी और कवि को प्राप्त हुई हो। उन्होंने कुछ कसीदे आदि भी लिखे हैं, परंतु विशेष अधिकार उन्हें गजलों पर ही प्राप्त है। उनकी गजलों में सूफियाना रंग स्पष्ट झलक देता है। उन्होंने प्रतीकों द्वारा सूफियाना रहस्य को हृदयंगम कराया है, यथा बसीरे जामे जम आंगा, नजर तवानी कर्द की खाके मैकदा कुहले, बसर तवानी कर्द। दो, एक, दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 491। दो, दीवाने हाफिज मदबा ए मजीदी कानपुर पृष्ठ 104। पृष्ठ संख्या 54, अर्थात तू जमशीद के प्याले के रहस्यों पर उसी समय दृष्टि डाल सकता है जब तू मदरालय की शार को अपने दृष्टि के लिए अंजन बना सके। जामेजम जमशीद बादशाह का प्रसिद्ध प्याला था, जिसमें संसार की समस्त घटनाओं का बिंब दृष्टिगोचर होता था। यह प्रतीक है सूफी के हृदय का। मैकदा से अभिप्रेत है वह स्थान जहाँ से सूफी को हृदय शुद्धि की सामग्री हाथ आई। गुरु के निवास स्थान को शराब खाना कहा गया है। इस शेर की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि सूफी पर यह बात प्रकाश की भांति पूर्णतः स्पष्ट है कि गुरु के द्वार पर धरना मार कर बैठने और हृदय को शुद्ध करने से लोक और परलोक विषयक समस्त सत्य निरावृत हो जाते हैं। गुरु की दया दृष्टि से अनेक गुप्त रहस्य प्रकट हो जाते हैं। ख्वाजा हाफिज के काल में कई छली कपटी एवं दम्भी अपने आप को सूफी कहकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। ख्वाजा साहब ने अपने दीवान में ऐसे पाखंडी सूफियों की धूल जी खोलकर उड़ाई है। हाफिज साहिब का फारसी एवं सूफी साहित्य में अत्युच्च स्थान है। उनका दीवान विदेशी भाषाओं में अनुदित होकर अपरिमित लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। हमारे विचार से यदि शेख सादी की रचना को काव्य का शरीर मान लिया जाए, तो उस शरीर का हृदय ख्वाजा हाफिज की रचना होगी। ख्वाजा साहिब के दीवान के सफल अनुवादक मिस्टर ओंसले ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, इनकी भाषा मुहावरेदार, सुंदर तथा बनावट से रहित है। शैली को देखने से ही पता चल जाता है कि लेखक उच्च कोटि का विद्वान है और उसे प्रकट तथा अप्रकट वस्तुओं का पर्याप्त ज्ञान है। इसके अतिरिक्त पृष्ठ संख्या 55, भाषा में एक ऐसा आकर्षण है जो अन्य कवियों की रचनाओं में नहीं पाया जाता। एक, डॉक्टर कासिम गनी एवं श्री ए जी आरबेरी के मतानुसार ख्वाजा हाफिज फारसी काव्य के श्रेष्ठतम कवि हैं। दो, मौलाना शिबली के मतानुसार हाफिज सूफी शुअरा में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। तीन, शेख मोहम्मद शीरी मगरबी तबरेजी, ख्वाजा हाफिज शिराजी के पश्चात तबरेज के शेख मोहम्मद शीरी मगरबी प्रसिद्ध सूफी कवि हुए। उनके जीवन वृत्त का निश्चय ज्ञान नहीं। कहा जाता है कि उनका देहांत तबरेज में सन 809 हिजरी, सन 1406-07 में 60 वर्ष की अवस्था में हुआ। अतः उनका जन्म सन 750 हिजरी, सन 1349-1350 में हुआ होगा। चार, कवि मगरबी की कविता अद्वैतवादी भावों एवं विचारों से ओतप्रोत है। उसमें मौलिकता तथा नवीनता का अभाव सा है। वे चबे को चबाते हैं और एक ही बात को सौ सौ बार कहते हैं, और वह भी एक ही शैली में। इस पुनरुक्ति से चित्त ऊब जाता है और सारा रस काफूर हो जाता है। एक, श्री बाके बिहारी तथा श्री कन्हैया लाल ईरान के सूफी कवि, इलाहाबाद, संवत 1996 विक्रम, पृष्ठ 318। दो, श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 346-347। तीन, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ, सन 1922 ईस्वी, पृष्ठ 103। चार, प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 331। इस संबंध में मौलाना शिबली के सब शब्द उल्लेख्य हैं। मगरिबी का कलाम सरतापा मसला ए वहदत का बयान है, पृष्ठ संख्या 56। और चूंकि तखयुल कल्पना और जिद्दत ताज़ापन कम है, इसलिए तबीयत घबरा जाती है। एक, उनके दीवान में प्राय 2300 शेर हैं। दो, शाह निमतुल्लाह वली उस समय के एक अन्य सूफी कवि शाह निमतुल्लाह वली का उल्लेख भी किया जाता है। वे वस्तुतः दरवेशों के शाह थे, अतएव सूफी पहले थे और कवि बाद में। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनकी कविता साधारण श्रेणी की है, उनमें शायरी कम है। तीन, प्रोफेसर ब्राउन के मतानुसार उनकी कविता में एक रस्ता है और वह साधारण कोटि की है। चार, उनका दीवान सन 1948 ईस्वी में तेहरान में प्रकाशित हुआ, इसमें प्राय 560 पृष्ठ हैं। शाह साहिब का देहांत 5 रजब 834 हिजरी 5 अप्रैल 1431 ईस्वी में हुआ। पाँच, एक, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ, सन 1922 ईस्वी, पृष्ठ 103। दो, श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 408। तीन, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ, सन 1922 ईस्वी, पृष्ठ 103। चार, प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 465। पाँच, श्री आरबेरी एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर लंदन, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 412। मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी 23 शबान 817 हिजरी 7 नवंबर 1414 ईस्वी में सूबा खुरासान पृष्ठ संख्या 57 की विलायत जाम के एक कस्बा खरजिर्द में उत्पन्न हुए। एक, आपके पिता का नाम निज़ामुद्दीन दश्ती और दादा का नाम शमशुद्दीन दश्ती था। दश्ती का संबंध इस्फहान के मोहल्ला दश्त से है, जहां वे जाम को छोड़कर आ बसे थे। दो, जामी ने अपना उपनाम एक तो जाम के कारण और दूसरे शेखुल इस्लाम अबू नस्र अहमद बिन अबुल हसन जामी मृत्यु 536 हिजरी के प्रति श्रद्धा एवं आस्था के फलस्वरूप अपनाया। तीन, बाल्यावस्था में जामी अपने पिता के साथ हेरात गए, इसके उपरांत समरकंद पहुँचे। यह स्थान उन दिनों इस्लामी विद्या एवं ईरानी साहित्य का केंद्र बना हुआ था। उन्होंने अपने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और धर्म साहित्य एवं इतिहास में पारंगत हो गए। तदनंतर उन्होंने तसव्वुफ के क्षेत्र में पदार्पण किया और कई प्रतिष्ठित सिद्ध सूफियों के सत्संग में सूफी मत के निगूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर लिया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और छोटे बड़े सब उनका आदर एवं मान करने लगे। चार, इसके बाद जामी ने यात्रा की, हज करके दमिश्क होते हुए सन 878 हिजरी में हेरात लौट आए। पाँच, इस यात्रा में बगदाद वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इससे उनका हृदय टूक टूक हो गया। छ, एक, क, प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज, सन 1951 पृष्ठ 507। ख, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफ़क़ तारीख़ अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 320। दो, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफ़क़ तारीख़ अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 320। तीन, वही पृष्ठ 320। चार, वही पृष्ठ 321। पाँच, वही पृष्ठ 321। छ, वही पृष्ठ 321। मौलाना जामी के समकालीन इतिहासकार दौलत शाह समरकंदी के अनुसार कवि ने अपनी आयु के अंतिम वर्षों में कविता का परित्याग कर पृष्ठ संख्या 58 दिया। तत्पश्चात उन्होंने कभी कभार पद्य लिखे, वे प्रायः सूफियाना गुत्थियों को सुलझाने में तल्लीन रहे। एक, मौलाना जामी सन 18 मुहर्रम 898 हिजरी 9 नवंबर 1492 ईस्वी में स्वर्ग सिधारे। उनको वहीं अत्यधिक सम्मान सहित दफन किया गया। दो, इसमें कोई संदेह नहीं कि जामी 9वीं शती हिजरी के महानतम लेखक कबीर मनीषी और ईरान के अंतिम श्रेष्ठ सूफी कवि हैं, जिनका नाम शेख सादी, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज आदि के साथ लिया जाता है। मौलाना जामी में प्राचीन सूफी कवियों का रंग झलकता है। वे सूफी कवियों से विशेषतः लाभान्वित हुए और उन्होंने उनकी शैली का अनुसरण किया। उनकी गजलें शेख सादी तथा ख्वाजा हाफिज के रंग ढंग की हैं। मौलाना जामी को लिखने का बड़ा व्यसन था, अतः उन्होंने प्रायः 45 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने काव्य के प्रत्येक अंग, मसनवी, कसीदा, गजल प्रभृति पर सकौशल लेखनी चलाई है। उनका दीवान फारसी साहित्य में विशेष महत्व रखता है और श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। वे मसनवियों में उच्च कोटि के मसनवीकार निजामी को अपना गुरु स्वीकारते हैं और उन्होंने निजामी की 5 मसनवियों के समानांतर 5 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें यूसुफ जुलेखा प्रसिद्धतम है। 4, इसे आदर्श मानकर कई मसनवियाँ लिखी गई हैं। उन्होंने 2 और भी स्वतंत्र मसनवियाँ रची हैं। 1, डॉक्टर रिजा सदा शफक, तारीख अदबियात ईरान 1336-1337, पृष्ठ 321। 2, प्रोफेसर ब्राउन और लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, भाग 3, कैम्ब्रिज, सन 1951, पृष्ठ 507। 3, श्री आर बेरी, एजी क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर, लंदन, सन 1958 ईस्वी, पृष्ठ 427। 4, मौलाना जामी ने यूसुफ जुलेखा में ईश्वर को शाश्वत सौंदर्य कहा है। यह सौंदर्य संसार की समस्त सुंदरताओं में श्रेष्ठ है। उन्होंने इस मसनवी में सांसारिक प्रेम को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करने का आदर्श प्रस्तुत किया है। पृष्ठ संख्या 59। शेख सादी की महत् कृति गुलिस्तान के अनुकरण में उन्होंने बहारिस्तान की रचना की। बहारिस्तान एक चंपू है, जिसमें उन्होंने गद्य एवं पद्य के फूलों को सजाया संवारा है, परंतु फिर भी उसमें गुलिस्तान की सी गंध एवं महक नहीं। कवि जामी सूफी काव्य गगन के एक दिव्यमान नक्षत्र हैं। उन्होंने अपनी सरस, सहज एवं सुंदर शैली में सजीव प्रतीकों द्वारा सूफी मत के निगूढ़ रहस्यों को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है और अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से सूफी साहित्य को 4 चांद लगा दिए हैं। यह लिखना समीचीन होगा कि जामी प्राचीन कवियों, क्लासिकल पोएट्स की श्रृंखला की अंतिम कड़ी हैं। अब हम उनके कलाम से उदाहरणार्थ 2 शेर प्रस्तुत करते हैं। मकामे कुए तुरा फुहस्त, हरम तंग अस्त, जे काबा तास रे कुयत, हजार फसंग अस्त। 1, अर्थात तेरी गली का स्थान, तेरी गली तो बहुत विस्तृत है, हरम मस्जिद तंग है, काबा से तेरी गली के सिरे तक हजारों मीलों की दूरी है। यहाँ कु अपार्थिव प्रियतम के स्थान का प्रतीक है। कवि हृदयंगम कराना चाहता है कि काबा तो ईश्वर प्राप्ति में एक सोपान के समान है। बकदे आईना हुसने तू भी नुमायद रुए, दिरेग की आईना एमा नुहुफ्ता, दर्जंग अस्त। 2, अर्थात दर्पण के अनुसार तेरा रूप लावण्य दृष्टिगत होता है, खेद है कि हमारा दर्पण जंग से आच्छन्न है। यहाँ आईना हृदय का और जंग सांसारिकता का प्रतीक है। संक्षेप में जामी के भाव पक्ष और कला पक्ष बेजोड़ हैं। 1, दीवाने जामी, चापखाना ए हैदरी, तेहरान, पृष्ठ 35। 2, वही पृष्ठ 40। मौलाना जामी के पश्चात 16वीं शती ईस्वी में सफवी शासकों के शासनकाल में सूफी काव्य ह्रास एवं पतन के गर्त में गिर गया। सफवी, पृष्ठ संख्या 60, शासक शिया धर्म से संबंध रखते थे। उन्होंने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। मुल्लाओं को मान दिया गया। सूफियों, दरवेशों को दुख देने में कोई कसर न छोड़ी गई। उदारता का स्थान संकीर्णता ने ले लिया। इस काल में तसव्वुफ, कविता, साहित्य और कला का फातेह पर दिया गया। इस कारण सूफी काव्य निष्प्राण सा हो गया। फिर भारतवर्ष तसव्वुफ का केंद्र बन गया। कवि उर्फी शिराजी, सफवी बादशाहों के शासनकाल में भारतवर्ष में कवि उर्फी शिराजी ने बहुत प्रसिद्धि पाई। सरस्वती के स्वरत पुत्र ने शिराज में सन 963 हिजरी सन 1555 ईस्वी में जन्म लिया और वहीं शिक्षा प्राप्त की। शीतला के प्रकोप से वे कुछ कुरूप हो गए और उनके चेहरे पर शीतला के चिन्ह भी अंकित हो गए। उस समय ईरान में शेरो शायरी का बाजार सर्द हो चुका था, अतः उनका दिल शिराज से उचाट हो गया। वे सन 1580 ईस्वी में समुद्र के रास्ते अहमदनगर आए और वहां से फतेहपुर सीकरी पहुंचे। वहां कवि फैजी ने उनको अत्यधिक होनहार कवि समझकर हाथों हाथ ले लिया। शीघ्र ही उनकी उच्च कोटि की कविता की चर्चा अकबर के दरबार में होने लगी। इस प्रकार वे अकबर के पास आ गए। 1589 ईस्वी में वे अकबर के साथ काश्मीर गए। इस संबंध में उन्होंने एक कसीदा भी लिखा, जिसका निम्नलिखित मतला है। हर सुख्ता जाने की ब कश्मीर दर आयत, गर मुर्गे कबाबस्त की बा बालों पर आयत। एक, अर्थात प्रत्येक दग्ध हृदय पक्षी जो कश्मीर में जाता है, वहां उसके बाल और पर उत्पन्न हो जाते हैं और वह उड़ाने भरने लगता है। एक, कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 87, पृष्ठ संख्या 61। उर्फी प्राय अपने युग के कर्ण अब्दुल रहीम खान खाना एक की छत्र छाया में रहे और उसके दरबार में मुलाजिम हो गए। उन्होंने कसीदे, गजलें और कतात वृत्तखंड लिखे। इनकी शैली का अनेक कवियों ने अनुसरण किया। हिंदुस्तान और तुर्किस्तान में वे अत्यधिक लोकप्रिय थे। दो, उनकी रचनाओं में सूफियाना रंग झलकता है। एक कसीदा जिसका मतला निम्नलिखित है, सूफी साहित्य की अमूल्य निधि है। जे खुद गर दीदा बरबंदी चे गोयम कामे जाबीनी, हमा कज इश्तियाक दीद नश जादी हमा बीनी। तीन, अर्थात यदि तू अपने आप पर आंख बंद कर ले, खुदी यानी अहम बात से मुंह फेर ले, तो मैं क्या बताऊं कि तू अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जिस अलौकिक रूप के दर्शन करने की अभिलाषा लेकर तू पैदा हुआ है, उसी को देख सकेगा। कवि उर्फी ने मौलाना निजामी जैसी 5 मसनवियां लिखना प्रारंभ किया, परंतु वे मखजनूल असरार एवं खुसरो शीरी के जवाब में 2 मसनवियों से अधिक न लिख सके। 4, उन्होंने एक गद्य ग्रंथ भी लिखा जिसमें सूफी मत के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 1, उनके आचार विचार के संबंध में मौलाना शिबली ने लिखा है कि उर्फी के अखलाक व शादात में जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया प्रत्यक्ष। 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी, संवत 2003 विक्रम, पृष्ठ 216। 2, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 346। 3, कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 75। 4, डॉक्टर रिजा ज़ादा शफक तारीख़े अदबियाते ईरान 1336-1337 पृष्ठ 346, पृष्ठ संख्या 62 है। वह फकर, गर्व, गुरूर, अभिमान, कमबीनी, संकीर्णता, खुद सिताई, आत्म प्रशंसा है। वह निहायत, अत्यधिक, हाजिर जवाब, प्रत्युत्पन्न मति और जरीफुल तब हास्य प्रिय था। 1, उर्फी की रचनाओं के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों निखरे हुए हैं। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र मौलिक भावों की झलक दृष्टिगोचर होती है। उनके भाव गहन तथा गंभीर हैं। उनका काव्य कल्पना और भावुकता का मनोहर संगम है। कलाम में बहुत तीव्रता एवं जोर है। उर्फी का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उनकी भाषा चलती हुई सरस, सरल और सुबोध है। वह सर्वथा स्वच्छ, निर्मल और निर्दोष है। शब्द छलकते हुए रूप में चले आते हैं। भाषा में सरलता होते हुए भी वह भावों की गंभीरता को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। फारसी साहित्य में उनकी प्रसिद्धि नूतन उपमाओं एवं नवीन रूपकों के लिए भी है। कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है। उर्फी का देहांत सन 1591 ईस्वी में लाहौर में हुआ और वहीं उन्हें दफना दिया गया। कुछ वर्षों के उपरांत उनके शव को यहाँ से नजफ 2 भेज दिया गया और वहाँ पुनः दफन किया गया। इस प्रकार उर्फी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। ब काविशे मिर्जा अज गोरता नजफ बरवम, अगर ब हिंद हलाकम कुनंद बर वर ब ततार। 3, अर्थात चाहे मेरी मृत्यु हिंदुस्तान में हो चाहे तुर्किस्तान में, मैं कब्र में पलकों से भूमि को खोदता हुआ नजफ तक पहुंच जाऊंगा। उर्फी केवल 36 वर्ष जीवित रहे। यदि वे ज्यादा देर जीवित रहते तो वे उच्च कोटि के सूफी कवि बन जाते। 1, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 3, अलीगढ़, सन 1315 हिजरी, 92-93। 2, यही हजरत अली का मकबरा है। 3, कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 18।